नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिए बुधवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.5% बढ़ाकर 4.9% कर दिया। आरबीआई के इस कदम से ऋण महंगा होगा और कर्ज की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ेगी। इससे पहले 4 मई को आरबीआई ने अचानक से रेपो दर में 0.4% की वृद्धि की थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि एमपीसी ने आम सहमति से नीतिगत दर में 0.5% की वृद्धि का फैसला किया है। रेपो दर में वृद्धि के साथ स्थायी जमा सुविधा दर 4.65% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 5.15% हो गई है। इसके साथ 6 सदस्यीय एमपीसी ने आने वाले समय में मुद्रा स्फीति को लक्ष्य के दायरे में रखने के मकसद से राहत उपायों को धीरे धीरे वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी फैसला किया है। दास ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा कि महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में 6% से ऊपर बने रहने की आशंका है। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर वृद्धि को लेकर जोखिम और रूस यूक्रेन युद्ध से तनाव के कारण मुद्रा स्फीति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि सरकार के आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के कदमों से इसे नीचे लाने में मदद मिलेगी। आरबीआई ने अन्य बातों के अलावा इस साल मॉनसून सामान्य रहने तथा कच्चे तेल का दाम औसत $105 प्रति बैरल रहने की मान्यताओं के आधार पर मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2022-23 में 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की उत्पादक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता या नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। दास ने बुधवार को यहां मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा, आगे चलकर महामारी की वजह से उपलब्ध कराई गई अत्यधिक तरलता को कई साल के समय में सामान्य स्तर पर लाया जाएगा। हालांकि इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ये सुनिश्चित करेगा कि अर्थव्यवस्था की उत्पादक जरूरतों के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक सरकार के कर्ज लेने के कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर ध्यान देगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 0.5% बढ़ाकर 4.90% करने का फैसला किया है। शेयर बाजारों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 69 अंक नीचे आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश होने से पहले ये गिरावट आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 68.73 अंक की गिरावट के साथ 55,038.61 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 13.15 अंक टूटकर 16,403.20 अंक पर कारोबार कर रहा था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का निर्णय आने से पहले बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 9 पैसे की बढ़त के साथ 77.69 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और विदेशी कोषों की सतत निकासी से रुपये का लाभ सीमित रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 77.70 पर खुला। बाद में ये और मजबूत हुआ और पिछले बंद स्तर की तुलना में 9 पैसे की बढ़त के साथ 77.69 प्रति डॉलर पर पहुँच गया। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 77.78 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार कई तरह की सहायता राशि देती है। इसमें महंगाई भत्ते से लेकर फिटमेंट फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस जैसी सुविधा दी जाती है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार सैलरी से अलग भी प्रोत्साहन राशि देती है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी करते हुए उच्च डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसे ₹30,000 तक का लाभ दिया जाता है। सरकार ने यह प्रोत्साहन राशि 5 गुना तक बढ़ा दी है। अगर कोई कर्मचारी पीएचडी की डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसे ₹10,000 की जगह ₹30,000 मिलेगा। यहां डिप्लोमा से लेकर पीएचडी डिग्री हासिल करने वाले कर्मचारियों को ₹10,000 से ₹30,000 दिए जाते हैं। पहले ये रकम ₹2,000 से लेकर ₹10,000 थी। ये रकम 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर कर्मचारियों को एक मुश्त दी जाती है। जल्द आपको सड़कों पर कोको कोला कंपनी की बोतलें कूड़े के ढेर या फिर सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई दिखाई नहीं देंगी। कंपनी उत्पाद बेचने के बाद ग्राहकों को उपयोग की जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के लिए बड़ी योजना पर काम कर रही है। कोका कोला कंपनी की ओर से सोमवार को कहा गया कि भारत में हम आने वाले 2-3 सालों में कंपनी की ओर से बेची जाने वाली 100% प्लास्टिक की बोतलों और कैनों का रिसाइकिल करेंगे। कंपनी की ओर से बताया गया कि वैश्विक स्तर पर कचरे के बिना दुनिया यानी वर्ल्ड विदाउट वेस्ट कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके तहत 2030 तक कंपनी पूरी दुनिया में बेचे जाने वाली सभी प्लास्टिक की बोतलों और कैनों को एकत्रित कर उनको रिसाइकिल करेगी। कोका कोला इंडिया की सार्वजनिक मामला एवं संचार यानी पब्लिक अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के उपाध्यक्ष देवयानी राज्य लक्ष्मी राणा ने पीटीआई के साथ बातचीत में कहा कि कंपनी का ध्यान बहुस्तरीय पैकेजिंग की बजाय बोतलों और कैनों को एकत्र कर उनका रिसाइकल करने पर है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।